नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाओ पीटीआर के वियंचियन में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और आसियान देशों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समुद्री सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से 2021-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 57% से अधिक बढ़ी। देशभर में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और जीवन नेदू चाझियान और विजय सुंदर प्रशांत स्पेन में वालेंसिया ओपन टेनिस के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंचियन में 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में ये सम्मेलन क्षेत्रीय रणनीतिक विश्वास निर्माण में योगदान करता है और प्रतिभागी देशों को क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर देता है।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका शामिल हैं। तिमोर लेस्ते भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेगा। 2005 से अस्तित्व में आए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का उद्देश्य रणनीतिक विश्वास का निर्माण करना, क्षेत्र के लिए शांति और स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत प्रशांत महासागर पहल की घोषणा की थी और तब से भारत ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए आसियान के अपने दृष्टिकोण के साथ इस पर आसियान देशों के साथ मिलकर काम किया है। 3 आसियान देश इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 3 भागीदार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत प्रशांत महासागर पहल में भागीदार हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की एक पहल है। श्री मोदी ने इस वर्ष जून में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वह लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इससे पहले कल श्री मोदी ने भारत आसियान सम्मेलन में कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति पसंद राष्ट्र हैं।
हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।
भारत और आसियान देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आसियान भारत रणनीतिक भागीदारी मजबूत करने संबंधी संयुक्त वक्तव्य में भारत और आसियान नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन किया। समुद्री और साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने, आपदा राहत और मानवीय सहायता, शांति बहाली और क्षमता निर्माण उपायों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में 57% से अधिक की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आमदनी 2016-17 के 8,059 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपए हो गई। परिवारों के औसत मासिक व्यय में भी वृद्धि हुई और ये 6,600 रुपए से बढ़कर 11,200 रुपए हो गया। इस दौरान बचत में भी बढ़ोतरी हुई और ये 9,100 रुपए से बढ़कर 13,200 रुपए हो गई। ग्रामीण परिवारों के बीमा कवरेज में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये 25.5% से बढ़कर 80% तक पहुंच गई है। ग्रामीण किसानों के वित्तीय समावेशन विस्तार में किसान क्रेडिट कार्ड ने प्रभावी भूमिका निभाई है। पेंशन कवरेज में भी सुधार हुआ है और ये लगभग 19% से बढ़कर 23.5% हो गया है। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत हिजबुत तहरीर और इसके सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि हिजबुत तहरीर कथित तौर पर युवाओं को आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल करने के लिए, कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं से सांस्कृतिक राजदूत बनने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत कई वैश्विक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्री शेखावत ने युवाओं और छात्र समुदायों से देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के वाहक और संरक्षक बनने के लिए भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में दुर्गा पूजा उत्सव का उल्लास चरम पर पहुंच गया है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। देश के विभिन्न भागों में पूजा पंडालों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। हमारे बिहार संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार में दुर्गा पूजा की भव्यता विभिन्न पूजा समितियों द्वारा बनाए गए पूजा पंडालों के माध्यम से प्रकट हो रही है। आकर्षक रोशनी, लेजर शो और अलग अलग थीम पर बने पूजा पंडाल बच्चे, बूढ़े, जवान और सभी वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बार पूजा समितियों ने केदारनाथ धाम, तिरुपति बालाजी मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों के मॉडल बनाए हैं। इन पंडालों में नक्काशी, सजावट, सौंदर्य, वास्तु और उनके तराशने का काम किसी भी मामले में मुख्य इमारतों से कमतर नहीं लग रहा है। पूजा के दौरान पंडालों के माध्यम से स्वच्छता के संदेश भी देने के प्रयास हो रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इस बीच हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव विजयदशमी के बाद 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 7 दिन का ये उत्सव 19 अक्टूबर तक चलेगा। उधर तेलंगाना के हैदराबाद में ऐतिहासिक हुसैन सागर झील कल रात बतुकम्मा गीतों के साथ आतिशबाजी और लेजर शो से जगमगा उठा। राज्य सरकार ने 9 दिन के उत्सव के समापन पर सैदुल्ला बतुकम्मा का आयोजन किया था। तेलंगाना की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक 9 दिन का सैदुल्ला बतुकम्मा उत्सव कल रात पूरे राज्य में झीलों और तालाबों के निकट सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर देवी गौरी की पूजा अर्चना की गयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देश विदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा अन्याय पर न्याय और असत्य पर सत्य की जीत और साहस का प्रतीक है। ये पर्व देवी दुर्गा के प्रति पूर्ण समर्पण तथा सभी धर्मों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने माँ दुर्गा से एक ऐसे संवेदनशील और समतामूलक समाज के सृजन की कामना की, जिसमें महिलाओं को समुचित आदर और सम्मान मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर आज सिक्किम पहुंच रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों और रक्षा तैयारियों पर विचार विमर्श करना है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 200 किलो कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर इलाके से कोकीन जब्त की गई है। इस सिलसिले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जब्ती उसी सिंडिकेट का हिस्सा है, जिससे पिछले सप्ताह 500 किलो से अधिक कोकीन जब्त की गई थी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ आमरण अनशन में भाग ले रहे डॉक्टर अनिकेत महतो को हालत बिगड़ने पर कल रात अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर ने बताया कि अनिकेत की हालत कल सुबह से बिगड़ने लगी थी और उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में बालिकाओं की लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह दिन दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जहां लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकें, अपने भविष्य का नेतृत्व कर सकें और उसे आकार दे सकें। भारत सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लड़कियों के भविष्य में निवेश वैश्विक समाज के सामूहिक भविष्य में प्रत्यक्ष निवेश है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
शिक्षा मंत्रालय ने कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ राजेश सागर ने तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी 50% अनियमितताएं 14 वर्ष की उम्र से पहले ही उभर जाती हैं। शैक्षणिक दबाव, माता पिता का संघर्ष और डराने धमकाने की घटनाएं इसका कारण होती हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में कल एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत अनुदान के रूप में 3,21,000 परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की है। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए अनुदान राशि की दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजी। पहली किस्त में 4,38,000 से अधिक परिवारों को लगभग 307 करोड़ रुपए दिए गए थे। श्रीलंका में आगामी आम चुनाव के लिए नामांकन आज दोपहर को समाप्त हो जाएंगे। श्रीलंका में आम चुनाव 14 नवंबर को होने वाले हैं। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति चुनाव के संपन्न होने के कुछ ही सप्ताह बाद श्रीलंका आम चुनावों के लिए कमर कस रहा है, जो निर्धारित समय से 11 महीने पहले संसद के भंग होने के कारण आवश्यक हो गए हैं। 4 अक्टूबर को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया आज दोपहर तक पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार कुल 33 स्वतंत्र समूहों और राजनीतिक दलों ने आम चुनाव लड़ने के लिए नामांकन जमा कर दिया है। 22 चुनावी जिलों से 196 सदस्य और राष्ट्रीय सूची से 29 सदस्यों को चुनने के लिए 14 नवंबर को मतदान होंगे। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कलम।
वहीं खेलों में जीवन नेदुचाझियान और विजय सुंदर प्रशांत वालेंसिया ओपन टेनिस के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के मिर्सी अलेक्जेंड्रे जेकन और बेलारूस के इवान लुआतरेविच को हराया। आज सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला पोलैंड के पियोत्रे मार्टुजवेस्की और करोल ड्रेजरेविकी से होगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच गया है। आज ऑस्ट्रेलियाई टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के पांचवें चरण के लिए कल पंजीकरण पोर्टल शुरू किया। युवा संगम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं का लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद फरहत। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की खबर आज सभी समाचार पत्रों में है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, अलविदा भारत के रतन रतन टाटा, अनंत यात्रा पर। अमर उजाला की सुर्खी है, अब अनंत में रोशन होंगे रतन। दैनिक जागरण की खबर है, हर आंख हुई नम, रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लगी कतार। हरिभूमि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की खबर सचित्र प्रकाशित की है। लाओस में मोदी मोदी, भारतीय समुदाय ने मंत्र और नृत्य से किया पीएम का स्वागत। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया के लिए देश की अहमियत बताई, भारत आसियान मित्रता संघर्ष के समय अहम। मध्य पूर्व में तनाव ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, महंगाई के आसार, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, भारत का खाड़ी देशों के साथ हर साल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार। इंसानी जीवन के बिखराव को कहानियों में पिरोने वाली साउथ कोरियाई लेखिका हान को साहित्य का नोबेल, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। एआई ट्रैफिक सिग्नलों से समय की 33% तक बचत, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाओ पीडीआर के व्यंजन में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और आसियान देशों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समुद्री सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से 2021-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 57% से अधिक बढ़ी। देशभर में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और जीवन नेदुचाझियान और विजय सुंदर प्रशांत स्पेन में वालेंसिया ओपन टेनिस के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।